कुछ पता चला उनका? कायरव ने रूम में घुसते हुए सवाल किया। अभी अभी वो जयपुर के होटल में पहुंचा था और फ्रेश होकर वापस रूम में आया था। नितिन को अपने आदमियों को फोन करके अपडेट लेने कह गया था। कुछ और ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आसपास के इलाके में मानव को देखा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो रहता कहाँ है, इसीलिए अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका है कि इस वक्त भाभी कहाँ है, नितिन ने गंभीरता से जवाब दिया। आवाज में हल्की मायूसी भी थी। कायरव का चेहरा सपाट था। वो क्लिनिक जहां इनाया को मानव के साथ देखा गया था, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? वहां से तो उनका एड्रेस बहुत आसानी से मिल जाता। वो छोटा सा क्लिनिक है, वहां ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए जाते, और डॉक्टर ने अपने पेशेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील करने से भी मना कर दिया है, इसीलिए वहां से हमें कुछ भी पता नहीं चल सका है। लेकिन कोशिश लगातार कर रहे हैं, जल्दी ही भाभी से जुड़ी कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिल जाएगी। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठकर और इंतज़ार नहीं कर सकता, अब मुझे खुद जाकर इनाया को ढूंढना होगा, कायरव ने गंभीरता से कहा और जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकलने लगा। लेकिन नितिन ने उसे रोक दिया। तू कहाँ ढूंढेगा भाभी को? कहाँ कहाँ भटकता परेशान होगा? हमारे आदमी अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रख। जब वो भाभी के इतने करीब पहुंच गए हैं तो उन तक भी पहुंच ही जाएंगे। कायरव एकदम से उसके तरफ पलटा और रोष भरे अंदाज में बोला, कब पहुंचेंगे? 5 महीने हो गए मुझे इनाया से मिले, पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगी। डैड उसकी जान के पीछे पड़े हैं, अगर मुझसे पहले वो उस तक पहुंच गए तो शायद मैं दोबारा कभी उसे देख तक नहीं पाऊंगा, और मैं इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे मेरी वाइफ मेरे पास चाहिए, अब मैं उसके इंतजार में और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अब मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने और ढूंढ कर ही वापस लौटूंगा। डैड दोबारा उसे हार्म करे उससे पहले मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। कायरव की आंखों में जिद और अंदाज में जुनूनियत थी। अब वो किसी की भी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। नितिन समझ गया कि अब वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसे रोक नहीं सकता। वहीं कायरव के लिए भी इनाया के इतने करीब आकर उससे दूर रहना बहुत मुश्किल था। उसे उसकी फिक्र थी, इसीलिए वो कुछ भी करके अब जल्दी से जल्दी इनाया तक पहुंचना चाहता था। कायरव ने अपने हाथ पर से नितिन का हाथ हटाकर तेज कदमों से चलते हुए रूम से बाहर निकल गया। अकेले अकेले कहाँ जा रहा है? मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ, नितिन चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ा। उनके लिए कार पहले ही रेडी थी, दोनों उसमें बैठे और कायरव ने कार स्टार्ट कर दी। हम कहाँ जा रहे हैं? क्लिनिक, आखिर हस्बैंड हो इनाया का, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं देंगे? वहीं से हमें अब उनके बारे में पता चलेगा, कायरव ने स्पीड बढ़ाते हुए जवाब दिया। नितिन ने अपने फ़ोन पर क्लिनिक की लोकेशन ऑन की और उसे गाइड करने लगा। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों उसी क्लिनिक के सामने खड़े थे, लेकिन सुबह का वक्त था और अभी क्लिनिक खुलने का टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए उसके गेट पर ताला लगा हुआ था। सच में वो एक छोटा सा क्लिनिक था और उसके आसपास कुछ और छोटी छोटी दुकानें थी। मेन शहर से दूर ये इलाका सुनसान सा लग रहा था। इनाया इस छोटी सी जगह आई सोचकर ही कायरव का दिल अजीब सा हो गया। वो डॉक्टर के पास आई मतलब उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। अब तो कायरव को उसकी और ज्यादा फिक्र होने लगी। उन्हें यहाँ खड़े 1/2 घंटे से ज्यादा हो गया था। आसपास की दुकानें भी खुलने लगी थी, लेकिन वो क्लिनिक अब भी बंद था और दोनों बड़ी ही बेसब्री से उसके खुलने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक ही नितिन का फोन बजा और उसकी नजरें कायरव की तरफ उठ गई, जो भौंहें सिकोड़कर उसे ही देख रहा था। नितिन ने कॉल रिसीव की, पता नहीं फोन की दूसरी तरफ से क्या कहा गया, लेकिन उसे सुनकर नितिन के एक्सप्रेशन बदल गए। उसकी आंखें चमकी और होंठों पर गहरी मुस्कान फैल गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, अभी हमें अपनी लोकेशन सेंड करो, हम बस अभी वहां पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? क्या इनाया के बारे में कुछ पता चला? कॉल करते हुए कायरव ने सवाल किया। उसकी बेसब्री और उतावलापन देखकर नितिन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। यस, यहाँ से 1/2 घंटे की दूरी पर लकड़ियों का बड़ा सा कारखाना है, मानव को वहां देखा गया है, हमें अभी इसी वक्त वहां पहुंचना होगा। नितिन के इतने कहने की देर थी कि कायरव तो इन्हीं वापस कार में बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। नितिन भी पैसेंजर सीट पर बैठा और उसे डायरेक्शन बताने लगा। सुबह के 10 बज रहे थे, मानव कारखाना जा चुका था। उनके घर के पास में ही एक छोटा सा पुराना मंदिर था जहां काकी अक्सर जाया करती थी। आज भी वो वहीं गई थी। घर में इस वक्त इनाया बिल्कुल अकेली थी। काकी खाना बनाकर उसे खाना देकर गई थी और इनाया सूनी निगाहों से खाने की उस प्लेट को घूर रही थी। कायरव के साथ बिताए लम्हे उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। उसका केयर करना, अपने हाथों से खाना खिलाना, उसकी पसंद की चीजें बनवाना, उसे सब कुछ याद आ रहा था। देखते ही देखते इनाया की आंखों में आंसू भर आए। कायरव की याद उसे शिद्दत से सताने लगी। कहाँ हो तुम? क्यों मुझे लेने नहीं आ रहे? अब तो तुम्हें वापस आए हुए भी इतना टाइम हो गया। क्या तुम्हारे लिए मुझे ढूंढना इतना मुश्किल है कि तुम्हें मुझ तक पहुंचने में इतना वक्त लग रहा है? या तुम मुझे ढूंढ ही नहीं रहे? कहीं तुमने अपने डैड की उस झूठी कहानी पर विश्वास तो नहीं कर लिया? उन फेक फोटोज को सच मानकर मुझे बेवफा और धोखेबाज तो नहीं समझ लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे कैरेक्टर पर शक करके मेरी मोहब्बत को ऐसे जलील नहीं कर सकते। तुम्हें वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगे। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा विश्वास है।
इनाया ने अपने दिल को समझाया, अपने आंसुओं को पोछा और भारी मन से पहला निवाला तोड़ा ही था कि उस सन्नाटे में फोन की रिंगटोन की आवाज गूंजी और इनाया ने वो निवाला वापस प्लेट में रख दिया। सहारे से खड़ी हुई और धीरे धीरे चलते हुए किचन में आई, क्योंकि काकी फोन वहीं छोड़ गई थी। स्क्रीन पर मानव का नाम चमक रहा था। इनाया ने पल भर सोचा और फिर कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, हेलो आना, मैं तुझे कुछ बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना और स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, ठीक है? दूसरी तरफ से मानव की थोड़ी परेशान सी आवाज आई, जिसने इनाया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे से सर हिलाया। क्या हुआ है? एना, हुआ ये है कि अभी जब मैं काम पर आया तो मेरे साथ काम करने वाले दो आदमियों ने मुझे बताया कि कल कोई उन्हें मेरी फोटो दिखाकर मेरे बारे में सवाल कर रहा है। जानने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरे बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, उन्होंने मुझे आसपास कहीं देखा है या नहीं। मुझे लगता है वो गुंडे हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए हैं। अब हमारा और वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं भाईसा से बात करता हूँ, तो आई के साथ मिलकर जरूरी सामान पैक कर ले, हम आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा जल्दी घर आने की, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं वो लोग यहीं आसपास छुपकर मुझ पर नजर तो नहीं रख रहे, वरना मेरा पीछा करते करते वो हमारे घर तक पहुंच जाएंगे और तेरी और आई की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तू और आई घर में ही रहना। अगर कोई आए तो बिना ये जाने कि कौन है दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा। तब तक तू और आई अपना ख्याल रखना, ठीक है? इनाया ने धीरे से सर हिला दिया। कुछ और बातें समझाने के बाद मानव ने कॉल कट कर दी, लेकिन इनाया अब भी फोन कान से लगाए शॉक सी खड़ी थी। वो गुंडे उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए, ये जानकर वो सदमे में थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे।
काकी, इनाया को अनीता जी का ख्याल आया और उसके कांपते होठों से धीमी सी आवाज निकली। वो तुरंत ही तेज कदमों से बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर उसके कानों में मानव के शब्द गूंजे, घर में ही रहना, और इनाया के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। अब इनाया को काकी की फिक्र होने लगी, लेकिन मजबूरी ऐसी कि वो इंतज़ार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो बेचैनी से अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए परेशान से यहाँ से वहाँ चहलकदमी करने लगी। कभी उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ जातीं तो कभी घड़ी की तरफ घूमती। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, इनाया की घबराहट और डर भी बढ़ता जा रहा था। देखते देखते आधा घंटा बीत गया। अचानक गेट नॉक हुआ। काकी? इनाया तुरंत गेट की तरफ बढ़ गई। उस लम्हे में वो मानव की बात भी भूल गई कि बिना ये जाने कि दरवाजे पर कौन है दरवाजा मत खोलना। इनाया को लगा कि काकी आई हैं। उसने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी, डर से उसका चेहरा काला पड़ गया और आंखों की पुतलियां फैल गईं। टू बी कंटिन्यूड।